आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद 37वां अध्याय श्लोक नंबर 12 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससात्सवै कालो यो प्रियप्रिययोषितम्। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससात्सवै कालो यो प्रियप्रिययोषितम्। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससात्सवै कालो यो प्रियप्रिययोषितम्। युक्तेषु उपयोगी कर्मों में एवं इस प्रकार प्रमत्तस्य असावधान रहकर कुटुंब परिवार के प्रति आसक्त अनुरक्त चेतस चेतना आससाद आ गया सह वह वै निश्चय ही कालह मृत्यु यह जो अप्रिय अच्छा न लगने वाला प्रिययोषितम् जो पुरुष स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं उनके लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस प्रकार राजा पुरंजन कर्मकांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रिययोषितम् तथा अप्रिय अत्यंत सार्थक शब्द है। योषित का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा या सुहावना। मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती जो भौतिक सुख के प्रति अधिक अनुरक्त रहते हैं और जिसका अंत संभोग में होता है। इस प्रकार इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा था तो उसे एक राजकुमार मिला। उसने उसे यह कहकर आशीर्वाद किया कि राजकुमार तुम जीते रहो। फिर उसे एक अन्य साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा फिर उसे एक अन्य साधु पुरुष मिला तो उससे उसने कहा कि चाहो तो जियो या मरो। फिर उसे एक ब्रह्मचारी मिला तो उसे आशीर्वाद दिया कि हे भक्त तुम तुरंत मर जाओ। बात ऐसी है कि जो लोग कामी हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे मरना नहीं चाहते। सामान्यतया राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है, इसलिए साधु ने कहा कि तुम जीते रहो, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा सुख भोगेगा और मरने के बाद नरक में जाएगा। चूंकि ब्रह्मचारी भक्त तपस्या जीवन बिता रहा था जिससे कि वह भगवान के धाम जाए, इसलिए साधु पुरुष ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुरंत मर जाए जिससे वृथाश्रम करना न पड़े और वह भगवत धाम जा सके। साधु पुरुष चाहे मरे या जीवित रहे दोनों प्रकार से भगवान की सेवा करता है। चूंकि शिकारी पशुओं के वध का जघन्य कार्य करता है और चूंकि मरने पर वह नरक जाएगा, इसलिए उसे उपदेश दिया गया कि वह चाहे जिए या मरे अंत में राजा पुरंदन का बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है और मनुष्य इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से विषय सुख, किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं दे पाती। ऐसे कामी पुरुष कभी मरना नहीं चाहता। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना तथा वैज्ञानिक विधि से अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ मूर्ख ऋषि विज्ञानी भी दावा करते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से वे एक मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही सिर फिरों के अधिनायकत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही है, किंतु निर्मम मृत्यु इन सबों को समेट लेती है, यद्यपि लोग सदा जीवित रहना चाहते हैं। हिरण्यकशिप में ऐसी ही प्रवृत्ति देखने को मिलती है, किंतु जब समय आ गया तो भगवान ने स्वयं क्षण भर में उसका अंत कर दिया। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सोपदन्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकंत राधाकंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युक्तेषु एवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससाधसभै कालो यो अप्रियः प्रियोयोषिताम्। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं पुरंजन की अवस्था का। तो इस पुरंजन के माध्यम से नारद मुनि संसारी व्यक्तियों की, गृहस्थ लोगों की जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं, उनकी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार संसार में व्यक्ति इस गृहस्थ जीवन में आसक्त हो जाता है, बन जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है कि प्रियोषितम्, अर्थात विशेष रूप से जो लोग, जिन लोगों का स्त्री प्रिय है, प्रियोषितम्, जिन लोगों का स्त्री प्रिय है, जो अत्यधिक स्त्री जिनके लिए अत्यधिक प्रिय है, ऐसे व्यक्तियों की क्या अवस्था होती है, नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रियोषितम् कुटुम्ब आसक्त चेतसः। तो स्त्री प्रिय होने के कारण व्यक्ति परिवार के प्रति आसक्त हो जाता है, कुटुम्ब के प्रति आसक्त हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि जीवस्य मोहयं अहं ममेति। ये जीव का मोह है कि वो सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पुत्र कन्याएं हैं, ये मेरे आत्मीय स्वजन हैं, ये मेरा परिवार, ये मेरा धन, ये सब मेरा है, मेरे भोग के लिए उद्दिष्ट। और इस प्रकार वो प्रमत्त हो जाता है, वो अपना विवेक शक्ति को खो बैठता है। इस प्रकार आसक्त होने से अपनी विवेक शक्ति को खो बैठता है और जीवन का लक्ष्य क्या है उसको जान नहीं पाता। कि यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और केवल इस मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति इस भौतिक बंधन से मुक्त होने का उपाय कर सकता है, इसलिए कहा है कि यह दुर्लभ मानुष जन्म, यद्यपि अध्रुवं अर्थवं, यद्यपि यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है एवं अनित्य है, दुर्लभ है और अनित्य है, फिर भी वो अर्थपूर्ण है। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को जब व्यक्ति प्राप्त होता है, मनुष्य जन्म ही एकमात्र जन्म है जिस जन्म में यदि व्यक्ति चाहे इस भौतिक संसार के बंधन से, भौतिक संसार के कष्ट से, सदा के लिए मुक्त हो सकता है, किंतु यदि वह पशुओं की तरह इस मनुष्य जीवन को भोग में लगा देता है, इंद्रिय सुख में लगाता है, इंद्रिय भोग में लगाता है, तो यह दुर्लभ मनुष्य जन्म के ये दुर्लभ अवसर को खो बैठता है और उसके पश्चात पुनः उसको 84 लाख योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है और संसार का दुख बार बार भोग करना पड़ता है। यही संसार का नियम है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग करे, अर्थात इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करे, तो वही व्यक्ति इस मनुष्य जन्म का वास्तविक उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर नारद मुनि प्राचीन भाई को कह रहे हैं, जो पुरंजन का उदाहरण देकर उनको बता रहे हैं, क्योंकि प्राचीन भाई ये भी संसार के भोग में इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे और इंद्रिय भोग के लिए तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान भी कर रहे थे, भोग की इच्छा से, कामना से विभिन्न यज्ञ का अनुष्ठान करते थे और यज्ञ से इंद्रिय भोग करने का फल प्राप्त होते थे। तो इसलिए तरह तरह के यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में पशु बलि देते थे, अपने इंद्रिय भोग के लिए वो पशुओं का बलि देते थे यज्ञ में। तो उनको शिक्षा देने के लिए नारद मुनि इस प्रसंग की अवतारणा कर रहे हैं, पुरंजन प्रसंग की अवतारणा कर रहे हैं कि पुरंजन किस प्रकार वही कर रहा था जिस प्रकार प्राचीन वही कर रहे हैं। तो पुरंजन भी जो जीव का प्रतीक है, किस प्रकार प्रिय योषितम, स्त्री उसके प्रिय होने के कारण या स्त्री को भोगने के लिए, क्योंकि ये संसार का, संसार में जो इंद्रिय भोग हैं, इंद्रिय भोगों में प्रमुख भोग हैं मैथुन। इसलिए जो व्यक्ति स्त्री के प्रति आसक्त, उसके जीवन का लक्ष्य होता है वो किस प्रकार इंद्रिय भोग मैथुन करेगा और उसके लिए किस प्रकार धन उपार्जन करेगा, यही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। इसलिए वो सोचता है कि उसके जीवन का लक्ष्य है धन उपार्जन करना और इंद्रिय सुख भोग करना, यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य वो मान लेता है और उसके लिए चाहे दूसरे प्राणी कितना भी कष्ट प्राप्त क्यों ना हो, उसको उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो दूसरों का दुख नहीं देख सकते कि दूसरे लोग उसके लिए दुख प्राप्त हो रहे हैं, उसके प्रति उसको ख्याल नहीं रहता, वो अपने सुख में लगा रहता है। इसलिए उसको प्रमत्त कहा गया, मत्त, केवल अपने बारे में सोचता है, अपना इंद्रिय भोग, अपना स्वार्थ, इसलिए दूसरों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय नहीं है, वो परार्थ के लिए नहीं सोच सकता। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो सदा सर्वदा जीवन भर इंद्रियों को भोग करना चाहते हैं, किंतु ऐसे लोगों के लिए ये एक अप्रिय बात या अप्रिय घटना घटित होती है जीवन में, क्योंकि व्यक्ति इंद्रिय भोग कर सकता है जब तक युवावस्था में है। यह स्वाभाविक है कि जब तक युवावस्था में है व्यक्ति इंद्रिय भोग कर सकता है, यदि उसके भाग्य में है भोग करने का। यदि नहीं है, युवावस्था में भी वो नहीं कर सकता। फिर भी मान लीजिए कि कोई युवावस्था में इंद्रिय भोग में लिप्त है, किंतु जब वृद्धावस्था आ जाती है तो उस समय उसके उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। इसलिए जबकि उसके मन में इच्छा भरी रहती है, भोग करने की इच्छा, किंतु वह भोग नहीं कर सकता क्योंकि इंद्रियां शिथिल हैं। इसलिए ये वृद्धावस्था जो है ये भौतिकतावादी इंद्रिय भोगी लोगों के लिए ये अप्रिय है, ये उनको अप्रिय लगता है ये वृद्धावस्था। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं यो अप्रिय प्रियोषितम सबई कालो आसदात। तो जो काल, जो समय, जो वृद्धावस्था प्रियोषितम, स्त्री जिनके प्रिय हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए वो ऐसा काल अप्रिय होता है, किंतु यह काल आना स्वाभाविक है। जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोग करना ये निश्चित है। कोई भी व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है तो मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा, व्याधियों को अवश्य भोग करेगा और वृद्धावस्था को अवश्य भोग करेगा। यही संसार है और संसार का दुख भी। हमें चाहे प्रिय लगे या न लगे, वृद्धावस्था हमें प्रिय लगे या न लगे वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु अच्छा लगे या न लगे मृत्यु आएगी, व्याधियाँ अच्छी लगे या न लगे व्याधियाँ आएंगी, और बार बार हमें मातृगर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा अलग अलग शरीरों में। ये संसार का नियम है। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि ये पुरंजन जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ था, स्त्री को भोग कर रहा था, और उसी में, उसी भोग में वो अपने लिए क्या करना उचित है क्या अनुचित है वो सोच नहीं पाया, अपनी विवेक शक्ति को वो खो बैठा, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य भोग करना यही रह गया था। इसलिए पुरंजन भी यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था और यज्ञ में पशुओं को बलि दे रहा था इंद्रिय भोग के लिए। इसलिए शास्त्रों में बताया है कि गृहेषु कुट धर्मेषु, तो लोग जो घर में रहते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, ये यद्यपि तथाकथित धर्म का पालन करते हैं जिसको यहाँ पर कूट धर्म कहा गया है। कूट धर्म अर्थात छल पूर्ण धर्म है, छल धर्म, ये वस्तुतः धर्म नहीं है, छल धर्म है, धर्म जैसा दिखता है, क्योंकि लोग धर्मों का पालन करते हैं अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उनकी अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, जैसे कोई मंदिर में आता है, लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा देवता उनकी इच्छा को तुरंत पूरा कर सकता है। ये देवताओं में सब भेद देखते हैं, गणना करते हैं कि कौन सा देवता अति शीघ्र हमारी इच्छा को पूरा कर सकता है, तो उसी के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। और ऐसे तो शिव जी आशुतोष हैं, बहुत शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं, तो लोग शिव मंदिर में अधिक भीड़ लगाते हैं। तो उनकी इच्छा है कि शीघ्र उनकी इच्छाओं की पूर्ति होना, तो ये मंदिर में जाते हैं, खूब चढ़ावा देते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, दूसरे देवी देवताओं को, जिससे कि वो प्रसन्न होकर धनं देहि जनं देहि विद्यां देहि रूपं देहि ये सब दीजिए, तो यही मांगते हैं जाकर। कोई शिव जी के पास जाता है, कोई दुर्गा के पास जाता है, कोई गणेश जी के पास, और आजकल तो बहुत सारे भगवान निकले हैं, उनका भी मंदिर बन रहा है, उनके पास भी पहुंच जाते हैं। तो ये सब देही देही देही, हमें ये दीजिए वो दीजिए वो दीजिए। तो ये बाहर से लगता है कि बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है और उसका उद्देश्य है कैसे स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। ये भी भौतिक इच्छा है। कोई स्वर्ग जाना चाहता है, ये भी एक भौतिक इच्छा है, क्योंकि वो स्वर्ग भोग करना चाहता, स्वर्ग सुख भोग करना चाहता। तो यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, जैसे आजकल लोग प्रचार करते हैं अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, और बहुत चंदा भी वसूल करते हैं, तो धन संग्रह करते हैं बहुत यज्ञ के नाम पर, और यज्ञ का फल क्या है? शून्य है, कोई फल नहीं। बहुत पैसा खर्च किया किंतु फल शून्य है। तो इस प्रकार लोग तथाकथित धर्म में लगे रहते हैं, जिसको कूट धर्म कहा गया। ये छल धर्म है, ये वास्तविक धर्म नहीं। तो धर्म क्या है? कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत उपदेश है, उसको पालन करना ही धर्म है। और भगवान का उपदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम दूसरे सारे धर्म अर्थात जितने भी छल धर्म हैं, मन गढ़ंत धर्म है, लोग अपने मन से भी धर्म बना लेते हैं, मन से भी किसी को भी भगवान मानकर पूजा करने लग जाते हैं, ये मनोधर्म इसको कहा गया। तो जितने भी मनोधर्म, छल धर्म, यहाँ तक कि वेद धर्म भी, वेदों में भी जो धर्म का वर्णन है उसमें भी लोगों को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अलग अलग उपाय बताए गए। तो ये वेद धर्म भी वास्तविक धर्म नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदेश सर्वेर अहं एव, समस्त वेदों में मैं केवल जानने योग्य हूं। अर्थात भगवान कृष्ण को जानना और उनकी पूजा करना, यही श्रेष्ठ धर्म है। वेदों में भी यही बताया गया है, किंतु लोग ज्यादातर आकृष्ट होते हैं वेदवाद रता, जो वेद के जो कथन है उसको पढ़ते हैं और उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, कि वेद ये कहते हैं वो कहते हैं, किंतु वेदों का उद्देश्य क्या है उसको नहीं समझते। कि वेदों का उद्देश्य भगवान कृष्ण को समझना, उनके चरणों में शरण ग्रहण करना, और यही बात भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूं, तुम चिंता मत कर। हम संसार में कष्ट भोग कर रहे हैं अपने पाप कर्मों के कारण, पूर्व जन्मों में कई जन्मों में कितने पाप किए हैं उसका फल सब आ रहा है, उसके कारण हम दुख भोग करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं तुम यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो किसी देवी देवता के पास जाने से देवी देवता तुम्हें दुख से मुक्त नहीं कर सकते, उनके पास वो शक्ति नहीं है, केवल भगवान कृष्ण ही मुक्त कर सकते हैं हमें दुखों से, क्योंकि वो हमारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो भगवान कृष्ण के शरण में जाना, उनका भक्त बनना, यही परम धर्म है। भगवान कृष्ण की पूजा करना, उनका स्मरण करना और उनको प्रणाम करना, ये श्रेष्ठ धर्म माना गया। अन्यथा बाकी जितने भी धर्म हैं ये सब कूट धर्म बताया गया, छल धर्म। तो गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्र दारा धनार्थ धी, तो इस छल धर्म के कारण व्यक्ति क्या सोचता है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरी संतान है, ये मेरे आत्मीय स्वजन, ये मेरा धन, तो ये इसी में ही वो डूबा रहता है सारा जीवन। किससे कि अधिक से अधिक धन उपार्जन करेगा और अपने परिवार के साथ सुख भोग करेगा, इसी में वो लगा रहता है। और उसका परिवार बढ़ता जाता है। और जब वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था आने पर भी जब उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, फिर भी वो व्यक्ति गृह को त्याग नहीं कर सकता। वो इतना आसक्त है, आसक्त धी, उसकी बुद्धि मन सब आसक्त हैं घर के प्रति। तो वृद्धावस्था आने पर भी अपने जीवन में क्या उसके लिए मंगल है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में वो नहीं सोचता कि उसके लिए क्या कल्याणकारी है, वास्तविक कल्याणकारी है, जो उसको इस संसार के बंधन से, संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त कर सकता है, उसके बारे में वो व्यक्ति नहीं सोचता। और किसी समय वृद्धावस्था पहुंच जाती है और अचानक मृत्यु आकर पहुंच जाती है, और मृत्यु के पश्चात पुनः उसको दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, उसके बाद पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। ये उसकी गति है। इसलिए प्रभुपाद जी जो एक सुंदर उदाहरण देते हैं, न परंग बिंदते मूढ़ ब्राह्मण संसार वर्तमस, जो मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने कल्याण की चिंता नहीं कर सकता, और इस प्रकार जो संसार का मार्ग है, दुख भोग करने का मार्ग, जन्म मृत्यु का मार्ग, उसी मार्ग पर चलता है और दुख भोग करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक सुंदर कथा कह रहे हैं कि एक साधु व्यक्ति जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक राजकुमार मिले, और राजकुमार साधारण तो भोग में लिप्त रहता है, क्योंकि उसमें उसके पास धन है और भोग करने के साधन, स्त्री और दूसरे साधन उपलब्ध है, इसलिए वो भोग करता है। तो साधु ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया, राजकुमार चिरंजीव, तुम दीर्घजीवी हो। क्यों ऐसा आशीर्वाद दिया कि दीर्घजीवी होने से ये इसका भोग और बढ़ जाएगा थोड़ा, किंतु जब इसकी मृत्यु होगी इसका कष्ट आरंभ हो जाएगा। इतना सब पाप कर्म किया है, लोग जो जब भोग करना चाहते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उनकी विवेक शक्ति काम नहीं करती है। भोग के प्रति जो आकृष्ट होता है, जो संसार के भोग मैथुन के प्रति आकृष्ट, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, और उसके लिए वो तरह तरह के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। वो सोच नहीं पाता है कि ये पाप कर्म है, और कभी कभी जानबूझकर भी पाप कर्म में लिप्त रहता है व्यक्ति, क्योंकि वो भोग करना चाहता है। तो जिसका परिणाम है कि उसको नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा और कष्ट भोग करना पड़ेगा, पाप का फल भोग करना पड़ेगा। तो इसलिए जब उसकी मृत्यु होगी वो तो नरक में जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा जन्म लेगा, पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी जन्म ले सकता है, और हर जन्म में उसको अपने पापों के फल स्वरूप कष्ट भोग करना पड़ेगा। नरक में कुछ कष्ट भोग करना पड़ेगा और जो दूसरा जन्म लेगा उसमें भी कुछ कष्ट भोग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बार नरक यंत्रणा उसने भोग ली और कष्ट नहीं भोग करना पड़ेगा, और भी भोग करना पड़ेगा। तो ये कष्ट ही कष्ट हैं जीवन में। तो इसलिए साधु ने कहा कि ठीक है राजकुमार को, जब तक जीवित हो थोड़ा भोग कर लो, आगे तुम्हारा दुख आ रहा है, दुख का समय आ रहा है, इसलिए आशीर्वाद दिया चिरंजीवी हो। और फिर एक साधु से मिले तो साधु को आशीर्वाद दिया, जीवो वा मरो वा, आप जीते रहे या मृत्यु को प्राप्त हो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो साधु हैं वो सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो जीवित अवस्था में भी वो भगवान की सेवा कर रहा है और मृत्यु के पश्चात भी वो भगवान के धाम में जाएगा, वहाँ भी भगवान की सेवा करता रहेगा, तो उसके लिए कोई अंतर नहीं है जीवित रहना और मरने में। इसलिए उसको आशीर्वाद दिया कि जीवो वा मरो, तुम जीते रहो या मरो कोई अंतर नहीं, दोनों समान हैं तुम्हारे लिए। और पुनः एक ब्रह्मचारी से मिले तो उसको आशीर्वाद दिया कि शीघ्र मर जाओ। तो ये ब्रह्मचारी को शीघ्र मरने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो कोई किसी को कहेगा कि तुम जल्दी मर जाओ, ये कोई आशीर्वाद होता है? लोग कहेंगे ये तो अभिशाप हो गया। क्योंकि हम जीवित रहना चाहते हैं संसार में, सुख भोग करने के लिए जीवित रहना चाहते हैं, और इसलिए हम साधुओं से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम दीर्घजीवी हों और सुख भोग करें अधिक से अधिक, हम यही चाहते हैं। और कोई साधु कहेगा तुम मर जाओ जल्दी, तो वो तो सोचेगा कि श्राप दे रहे हैं मुझे, हमारे भोग को समाप्त कर रहे हैं। किंतु ब्रह्मचारी के लिए ऐसा क्यों देते हैं आशीर्वाद? क्योंकि ब्रह्मचारी बेचारा तपस्या करता है, ब्रह्मचारी का यही जीवन है। ब्रह्मचारी का जीवन भोग का जीवन नहीं है, ब्रह्मचारी का जीवन त्याग का जीवन है, तपस्या का जीवन है। तो ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, गुरु गृह में रहकर शास्त्र अध्ययन करता है। तो ब्रह्मचारी का जीवन जो है ये नियमों से बंधा जीवन है। जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहता है तो गुरु जो भी सेवा देंगे उसको करने के लिए वो बाध्य है, वो नहीं कर सकता कि मैं ये सेवा नहीं कर सकता। और सेवा करेगा और गुरु जब तक नहीं कहेंगे खाने के लिए वो नहीं खाएगा, उसको उपवास रहना है। मान लीजिए गुरु भूल गए उसको खाने के लिए नहीं बुलाए, तो ब्रह्मचारी को उपवास रहना पड़ेगा। तो ये बहुत संयमित जीवन है ब्रह्मचारी का। इसलिए उसको तपस्या करनी पड़ती है ब्रह्मचारी जीवन में। तो साधु ने आशीर्वाद दिया कि तुम जल्दी मर जाओ, इससे कि तुम्हारा जो तपस्या का जीवन, तुम जो कष्ट प्राप्त करते हो तपस्या के कारण, त्याग के कारण, वो समाप्त हो जाएगा और तुमने जो तपस्या की है उसके फल स्वरूप तुम भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो प्रकारांत में ये आशीर्वाद है ब्रह्मचारी के लिए, इस कोई श्राप नहीं। कभी कभी संसार के लोग भी देखा जाता है जो संसार में बहुत दुख भोग करते हैं, कष्ट में है, ये लोग क्या चाहते हैं? वो मृत्यु चाहते हैं, जबकि कोई भी संसार में मृत्यु नहीं चाहता है। किंतु जो लोग अति कष्ट में हैं वो सोचते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, इन कष्टों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। जबकि मृत्यु दुख का अंत नहीं है, फिर भी लोग यही चाहते हैं। तो कभी कभी वो मृत्यु मांगते भी हैं, कभी भगवान के पास आते हैं तो मृत्यु मांगते हैं, इतने कष्ट में है। तो ये ब्रह्मचारी के लिए कोई श्राप नहीं है, ये साधु का आशीर्वाद है कि वो दुख से कष्ट से उसकी मुक्ति हो जाएगी, तपस्या के जीवन से मुक्ति हो जाएगी। और बाद में उस साधु ने देखा एक व्यक्ति जो कसाई, वो पशुओं की हत्या करता है और मांस बेचता है, तो उसको आशीर्वाद दिया कि ना जीवो ना मरो, तुम्हें जीना नहीं है और मरना भी नहीं, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। इसका, इस आशीर्वाद का अर्थ क्या है कि ये कसाई, इसको आशीर्वाद दिया ना जीवो, तुम्हें जीवित नहीं रहना। क्यों ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये अधिक काल जीवित रहेगा तो अधिक पशु हत्या करेगा और पाप करेगा, और फिर कहा ना मरो, तुम मरो नहीं, क्योंकि ये मरेगा ये फिर नरक में जाएगा, इतने सारे पशुओं की हत्या की है तो ये नरक में जाएगा, और ये जितने भी पशुओं की हत्या की है ये सारे पशु इसकी भी हत्या करेंगे, इसका परिणाम है। जो लोग मांस खाते हैं वो पशुओं की हत्या करते हैं, पशु हत्या दोषों में भागीदार होते हैं। तो इसका परिणाम है कि अगले जन्मों में वे पशु मनुष्य बनकर जन्म लेंगे और ये व्यक्ति पशु बनेगा, और उस प्रकार वो मारा जाएगा उन पशुओं के द्वारा, वही पशु इसके मांस खाएंगे। अभी हम जिसका मांस खा रहे हैं वही पशु हमारे मांस खाएंगे, हम पशु बनेंगे वो मनुष्य बनेंगे। तो हम जितनी बार मछली मांस खा रहे हैं उतनी बार हमें जान लेना चाहिए कि हमें आगे भोग करना पड़ेगा, हमारा मांस भी वो पशु खाएंगे। तो ये परिणाम है। तो इसलिए साधु ने आशीर्वाद दिया कि ना मरो, ना जियो ना मरो। तो ये जो समय है बहुत बलवान है, हम समय का किस प्रकार उपयोग करते हैं इस पर हमें चिंता करनी चाहिए कि वास्तविक इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका विश्लेषण हमें करना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक पद्य में लिखा है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे कई पदों की रचना की है भगवान से प्रार्थना के रूप में। तो कहते हैं कि प्रभु है सुनो मोर दुखेर काहिनी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे दुखों की कहानी आप अब सुनिए कि मेरा जीवन कैसा है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों के जीवन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग कैसे जीवन में दुख भोग कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, इस पद के माध्यम से वो बता रहे हैं कि कहते हैं कि सुनो मोर दुखेर कहानी, विषय हलाहल सुधा भावे पियलु। तो संसार विषा विष, संसार का जो भोग है ये विष के समान है। तो जैसे कोई विष पान करता है तो क्या होता है, उसका परिणाम उसकी मृत्यु निश्चित है। विष पान करने पर मृत्यु निश्चित है। तो हम संसार विषय वो विष, संसार का जो विषय भोग है, इंद्रिय भोग, वो विष के समान है। और इस इंद्रिय भोग करने का अर्थ है हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। किंतु फिर भी लोग विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। कैसे लिप्त रहते हैं? क्योंकि विषय भोग को लोग क्या सोचते हैं, ना अमृत मानते हैं। जो विषय भोग विष तुल्य हैं, संसारी लोग जो इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त हैं, उस विषय विष को अमृत मानते हैं। तो सुधा भावे पियलु, सुधा अर्थात अमृत, अमृत मानकर मैंने इस संसार विषय विष को पान किया है। तो हम अमृत मानकर पान करें या जो करें, विष तो अपना अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा। हम इसका परिणाम जाने या न जाने, जैसे हम दवा लेते हैं, दवा का परिणाम क्या है हम जाने या न जाने, दवा काम करेगा। तो विष हम अनजाने में ले लेते हैं, फिर भी विष अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा, फल हमें भोग करना पड़ेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आवो अवसान दिन मांगे। तो इस विषय भोग में हम इतने लिप्त हैं कि कब सूर्यास्त तो हो गया हमें पता नहीं चला। हम सूर्य उदय हुआ था और अब सूर्य अस्त तो हो गया है, किंतु हम भोगों में इतने लिप्त हैं कि पता नहीं चला कब सूर्य अस्त हो गया। इसका अर्थ क्या है सूर्य का अस्त होना, कि हम विषय भोग में लिप्त रहे और कब हमारी आयु समाप्त हो गई, वृद्धावस्था आ गई, हमें पता नहीं चला विषय भोग में लिप्त रहकर। तो वृद्धावस्था मृत्यु की सूचना वृद्धावस्था, मृत्यु की घंटी है, सूचना घंटी, घंटी बज जाती है, अब वृद्धावस्था आ गई, अब मृत्यु आने वाली। तो ये तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस भोग में पता नहीं चलता है कि कब सारा समय बीत गया, आयु बीत गई, अब मृत्यु आकर उपस्थित हो गई। इस पता नहीं चला। जैसे अजामिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो अजामिल 88 साल तक भोग करता रहा विषय भोग, और उसको पता नहीं चला अचानक मृत्यु आकर उपस्थित हो गई। तो 88 साल तक वो भोग कर रहा था। तो उसी प्रकार खेला रसे शैशव पढ़ित कैसर, तो हमारा शिशु काल किस प्रकार व्यतीत हुआ, क्रीड़ा में, खेलने में। और जब कैसर उपस्थित हुआ उस समय हम विद्या अध्ययन में लग गए, उसी में व्यतीत हो गया विद्या अध्ययन में। और भोगवश है यौवन, और यौवन कैसे व्यतीत हुआ, भोग में, मैथुन भोग में, इंद्रिय भोग में यौवन व्यतीत हो गया। और उसी यौवन काल में हमने घर बसाया और सुत मित अर्थात पुत्र कन्याओं को उत्पन्न किया और अपने आत्मीय स्वजन बनाए, इस प्रकार परिवार बढ़ गया। अब वृद्ध काल आओल सब सुख भागल। प्रभुपाद जी बहुत बार इसका उदाहरण देते थे, वृद्ध काल आओल सब सुख भागल। अब वृद्धावस्था आ गई और सारे सुख भाग गए। अब दुख का समय आ गया, इंद्रियां शिथिल पड़ गई, जबकि सुख भोगने की इच्छा है फिर भी भोग नहीं कर पा रहे। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का कष्ट हमें भोग करना पड़ रहा है, आंखों को ठीक तरह देख दिखाई नहीं पड़ता है, कानों को सुनाई नहीं पड़ता है, जो खाते हैं हजम नहीं होता है, रात में नींद नहीं आती है। तो ये सब दुख है वृद्धावस्था का, कष्ट है, चलने में, बैठने में ये सब कष्ट है, सोने में कष्ट। तो ये वृद्धावस्था का कष्ट जो वृद्धावस्था में है वो लोग जानते हैं कैसा कष्ट है। तो वृद्धावस्था में और कोई सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है। जो सुख भोग किए थे युवावस्था में, अब वृद्धावस्था में केवल कष्ट ही भोग करना है और मृत्यु की प्रतीक्षा करना। तो ये बहुत बड़ा कष्ट है जब हम मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ओल्ड एज होम है, बहुत सारे वृद्ध वृद्धाएं ओल्ड एज होम में रहते हैं और क्या करते हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं कब मृत्यु आएगी। ये और एक कष्ट है मृत्यु की प्रतीक्षा कर। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि हमें बचपन से, बाल्यावस्था से, कौमार अवस्था से, कौमारंग आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि, कुमार अवस्था से ही इस भागवत धर्म, भगवान की भक्ति का मार्ग का अभ्यास करना। और यदि हम कुमार अवस्था से अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास के कारण हम चाहें युवावस्था में घर पर रहें, फिर भी हम यद्यपि इंद्रिय भोग करते हैं किंतु अपने जीवन के लक्ष्य को हम नहीं भूलते, हम अनासक्त रूप से इंद्रिय भोग कर सकते हैं किंतु कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकते हैं। और जब वृद्धावस्था का समय आएगा, हम गृह त्याग करके हम पूरा समय भगवान की सेवा में लगाएंगे। ये वर्णाश्रम विधि के अनुसार व्यक्ति कर सकता है कि गृहस्थ जीवन 50 वर्ष तक व्यतीत कर सकता है, उसके पश्चात भोग को जलांजलि देकर 50 साल के बाद भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। तब फिर वह मृत्यु के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगा, भगवान की सेवा में इतना रम जाएगा कि उसको मृत्यु आए ना आए उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो भगवान की सेवा में लगकर सेवा का आनंद ले रहा। जो भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है वो सेवानंद को प्राप्त करता है। तो इसलिए उसके लिए मृत्यु आना नहीं आना उसमें कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं। मृत्यु आने पर वो भगवान के धाम में जाएगा, और जब तक मृत्यु नहीं आती है वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तो हमें ऐसे साधु बनना कि वृद्धावस्था का समय हम भगवान की पूर्ण सेवा में लगा दें, और गृहस्थ जीवन में पड़े रहकर और उसी प्रकार प्रमत्त के समान हम उस गृहस्थ जीवन के इंद्रिय भोग में डूबे रहे, इंद्रिय भोग की लालसा बनी रहे, तो ये बहुत बड़ा कष्ट है। लालसा बनी रहती है किंतु हम भोग नहीं कर सकते, तो इसका परिणाम है कि हमको बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, संसार का कष्ट भोग करना पड़ेगा। क्योंकि हम हर जन्म में इंद्रिय भोग कर रहे हैं फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए कहा गया है कि न जातु काम कामिनं उपभोगे न सम्यति। कामी व्यक्ति का काम उपभोग में समित नहीं होता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना है और मन को कृष्ण के चरणों में लगाना है। इंद्रिय भोग से मन को हटाकर भगवान कृष्ण के चरणों में लगाना है, और इस प्रकार जब मन भगवान के चरणों में लगेगा तो ये इंद्रिय भोग ये तुच्छ प्रतीत होंगे। इसलिए बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, यन मैथुनादि गृह मेधि सुख ही तुच्छम कंडु यने न करो रिव दुख दुखम। तो ये गृहमेधि सुख जो है, इंद्रिय सुख या मैथुन सुख, या अति तुच्छ सुख है, ये कंडु यने न करो रिव दुख दुखम। जिस प्रकार कंडु रोग किसको हो गया वो खुजलाने लगेगा तो उसका कष्ट और बढ़ जाएगा। थोड़े समय के लिए सुख मिलेगा किंतु बाद में दुख मिलेगा। तो ये मैथुन सुख ऐसा ही है, थोड़ा सुख है बाद में वो दुख का कारण बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि कंडुतिवत मनसी ज विषहेत धीर। तो व्यक्ति को धीर बनना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। तो धीर कैसे होगा कि ये जो इंद्रिय भोग की लालसा है उसको वो सहन करेगा। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, उसको सहन करना सीखेगा, और इस प्रकार उसको धीर बनना चाहिए। तो सहन कैसे वो कर सकता है, जब उस अपने मन को भगवान की सेवा में लगा सकता, भगवान के चिंतन में लगा सकता है। भगवान गीता में कहते हैं मेरा सदा सर्वदा चिंतन करो, तो भगवान के चिंतन में मन लगाएंगे तो फिर इंद्रिय भोग के लिए मन नहीं जाएगा। तो इस प्रकार भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा श्रवण में, भगवान की कथा कीर्तन, उनके गुण कीर्तन, उनके नाम संकीर्तन, नाम जप, तो इसी में जब हम मन को लगाएंगे तो अपने आप मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, फिर इंद्रिय भोगों के ओर नहीं जाएगा। इंद्रिय भोग तुच्छ प्रतीत होंगे ऐसे व्यक्ति के लिए। तो और इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगी रहेगी तो फिर विषय भोग की ओर नहीं जाएगी। यही इंद्रियों को नियंत्रित करने का उपाय है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। और इस प्रकार हम अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को धन्य कर सकते हैं। वृद्धावस्था का समय ये दुख देने का समय आता है। वृद्धावस्था में हम भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? वस्तुतः ये कुमार अवस्था से ही हमें भगवान की सेवा सीखनी चाहिए। युवावस्था में हमें भगवान की सेवा में लगी रहनी चाहिए, क्योंकि युवावस्था में हमारी इंद्रियां चंचल है और शक्तिशाली हैं, तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं और नियंत्रित रूप से कुछ इंद्रिय भोग कर सकते हैं गृहस्थ के रूप में, जो शास्त्रों में दिया गया है, नियंत्रित इंद्रिय भोग और उसके साथ साथ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। यह अभ्यास हमें करना चाहिए, तब हम वृद्धावस्था में सहज रूप से भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।